हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सब बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे राधे जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय गौर हरि निताय गौरंग जय गौर हरि श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के सत्र में, इस विशेष सत्र में पुनर एक बार स्वागत।
हरे कृष्णा, सॉरी, कृपया आप सब लोग इस तरफ आइए, बीच में जगह है, लोग उधर खड़े हैं, आप थोड़ा जगह दे देंगे तो लोग अंदर आ सकते हैं। कृपया दो जो भी दरवाजे के जगह में खड़े हैं थोड़ा अंदर आ जाइए, लोग अंदर आ सकते हैं। आप इस तरफ आइए, आप सब लोग इस तरफ आइए, इधर बीच में बहुत जगह है, लोग आके बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो आज के दिन का इस उत्सव का नाम है ब्रह्मोत्सव। माने आज से 9 साल पहले श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी, उनका यहाँ पर आविर्भाव हुआ और भगवान का आविर्भाव कैसे होता है? स्वेच्छा से होता है, भगवान की इच्छा से होता है। और जब ही उनको शुद्ध भक्त आमंत्रण करते हैं तो भगवान आते हैं। तो आज हम थोड़ा सा शुरुआत में ये विग्रह की पूजा क्या होती है, श्री विग्रह और प्रतिमा में क्या अंतर है वो हम आज समझेंगे। भगवान की श्री मूर्ति, श्री विग्रह और प्रतिमा में क्या अंतर है वो प्रथम हम थोड़ा समझेंगे। उसके बाद विविध जो भक्त हैं जो अपने हृदय से अर्चा विग्रहों की अर्चना कर रहे हैं तो उनके साथ भगवान का कैसे आदान प्रदान है वो भी हम आज देखेंगे। तो सबसे प्रथम देखिए, बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं में लोग कहते हैं कि अरे ये विग्रहों की उपासना क्यों कर रहे हो, भगवान तो सब जगह पे है। तो सब जगह पे है लेकिन कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहे और आप तो कहीं पे भी उनकी उपासना नहीं कर रहे हो। जो सबका है वो किसी का नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है वो तो सबका है, तो इसलिए कोई खुद जाके वहाँ पे क्लीनिंग करता है, साफ सफाई करता है, क्यों? क्योंकि सबका है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान विशेष रूप में हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए आविर्भूत होते हैं विग्रहों में, विग्रहों के रूप में। वैसे तो परमात्मा रूप में सब जगह पे है, लेकिन जैसे पानी हवा में सब जगह पे है कि नहीं है, कैसे पता चलता है? आपने अपना कपड़ा धोकर थोड़ा रख दिया, थोड़ी देर बाद क्या होता है, सूख जाता है, मतलब कहाँ चला गया वो, हवा में चला गया, बराबर ना? मतलब हवा में पानी है कि नहीं है? है। लेकिन जब ये आपको प्यास लगती है तो क्या करते हो, हवा का पानी पीते हैं? नहीं, क्यों? सब जगह पे है ना पानी, तो हवा में भी है। तो लेकिन पानी के स्रोत पे आकर हम पानी पीते हैं कि नहीं पीते? वैसे ही भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह पे है, लेकिन स्वयं कह रहे हैं मैं विग्रह के रूप में, हरिनाम के रूप में आविर्भूत होता हूँ, शास्त्रों के रूप में आविर्भूत होके आपके साथ आदान प्रदान करता हूँ, तो फिर हम पीछे क्यों हटे? फिर हम वहाँ पे क्यों ना जाएं, वो स्रोत पर हम क्यों ना जाएं? तो ऐसे बहुत कुयुक्तिवाद करते हैं, बहुत सारे ऐसी नास्तिक विचारधाराएं हैं जो कहते हैं कि अरे, जैसे एक बताते हैं कुछ म्लेच्छ यवन विचारधारा ऐसी है कि अरे नहीं नहीं भगवान तो एक है, तो अगर आप भगवान की प्रतिमा बना देंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान का प्रतिस्पर्धी आप बना रहे हैं, समझ रहे हैं? भगवान तो एक है, उनकी अगर आप, अच्छा ठीक है, ये और एक अनाउंसमेंट है, लेकिन इसमें कभी कलेक्ट करो लिखा नहीं है, प्रसादम कूपन नीचे से कलेक्ट करना है ऐसा लिखा है, 9:30 से 12:30 के बीच में। अच्छा, तो 9:30 से 12:30 के बीच में ये प्रसादम कूपन्स नीचे अवेलेबल है, तो आपके प्रसाद, हाँ ये कह रहे हैं कि कथा होने के बाद तुरंत नीचे जाके प्रसाद कूपन कलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर भजन और भोजन दोनों की व्यवस्था हो जाएगी। तो वापस ऊपर आ जाइएगा, लेकिन यहाँ पे महाअभिषेक होगा, उसके बाद 12:30 बजे ललिता भवन में भोजन होगा। ठीक है, तो कहाँ था हमें, हाँ प्रतिस्पर्धी। तो कहते कि अरे आप भगवान का प्रतिस्पर्धी बना रहे हो, आप वस्तु की उपासना कर रहे हो, भगवान को छोड़ो कि किसी वस्तु की, कोई लकड़ी से बनी वस्तु की या किसी पत्थर से बनी वस्तु की या किसी रत्न से बनी वस्तु की उपासना कर रहे हो, तो इसका मतलब आप भगवान का अनादर कर रहे हो, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो उनका ऐसा उत्तर दे रहे हैं हम नहीं दे रहे, हमारे आचार्य दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे सामने जो कुछ भी दिखता है वो किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। और भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से, अपने किसी भी शक्ति से अपने आपको हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते कि नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो भगवान की कोई अचिंत्य शक्ति है ही नहीं, है कि नहीं? तो इसको जानना हमको आवश्यक है कि भगवान हमारे हृदय की भावना के साथ आदान प्रदान करते हैं, और जब भी हृदय में वो भाव है तभी भगवान हमको दिखेंगे, वरना क्या दिखेगा, केवल लकड़ी के बने हैं या केवल पत्थर के बने हैं, ऐसा लगेगा। ठीक है, जैसे आप सोचिए आपकी कोई पसंदीदा किताब है जो पढ़ते पढ़ते आप अपना होश खो बैठे, आप पूरा उसमें मग्न हो गए, दिन रात पढ़ रहे थे, ऐसी कोई किताब सोचिए अपने जीवन में, कोई तो किताब ऐसी होगी जो जिसने आपका मन बहुत रिझाया हुआ होगा। ऐसी किताब आप रद्दी वाले के पास लेके जाइए और बोलो इसकी कीमत करो, तो कैसे कीमत करेगा वो, कैसे कीमत करेगा, वजन के ऊपर तोल के बोलेगा अरे ये 1 किलो है, 1 किलो की किताब है, इसका मैं 5 रुपये दूंगा। तो बोले 5 रुपये, इस किताब ने मेरी जिंदगी बदली है, अरे मेरे लिए तो ये कागज और स्याही है बस, और कुछ नहीं है। तो वैसे ही जो आध्यात्मिक रूप से रद्दी वाला है, माने आध्यात्मिक वस्तु को या विज्ञान को नहीं समझता, वो जब भगवान के सामने आता है, विग्रहों के सामने आता है और देखता है कि कोई भक्त है भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, तो सोचता है ये क्या है, ये क्यों एक पत्थर के सामने रो रहा है या हंस रहा है। जैसे वो रद्दी वाला सोचेगा कोई पुस्तक पढ़ते हुए, अरे पुस्तक पढ़ के ये कागज को देख के हंस रहा है, रो रहा है, क्यों रो रहा है, है कि नहीं? तो बिल्कुल इसी प्रकार, क्योंकि वो अनपढ़ है, वो समझता नहीं है कि उससे, अरे वो केवल कागज से ही नहीं है, उसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है, हमारा जीवन पूर्ण बदल सकता है वो। तो बिल्कुल उसी प्रकार भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी को कि आप मेरी अर्चा विग्रह को स्थापित करो, मैं स्वयं आके ग्रहण करूंगा आपकी सेवा। एक बार प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति आया और बोलता था कि अरे आप इतना भगवान के सामने, आप ये सब आपकी कल्पना है कि भगवान के सामने आप भोग लगा रहे हो, माने कि आप कुकिंग कर रहे हो और भगवान के सामने 56 प्रकार की उपकरण रख रहे हो और आप खुद मन से ही मान रहे हो कि भगवान ने ये ले लिया और बाद में आप ग्रहण कर रहे हो। तो प्रभुपाद ने उससे कहा, भगवान भगवद्गीता में कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरुतम अश्नामी प्रयत्नात्मना, मतलब जो प्रयत्न से भगवान को भक्ति से अर्पण करे तो मैं ग्रहण करता हूँ, अश्नामी मैं उसे खाता हूँ, ऐसे भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो अगर भगवान स्वयं कह रहे हैं तो मैं भगवान की सुनूं या आप जैसे मूर्ख की सुनूं, जैसे प्रभुपाद जी ने उसको उत्तर दिया। तो ऐसे बहुत सारे हम श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अनेक अनेक जगह पे अनेक अनेक विग्रहों की स्थापना हो चुकी है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, हमको निराकार की उपासना करनी है। तो प्रभुपाद जी उसको बोले, भगवान गीता में कहते हैं, सब कुछ शास्त्र के हिसाब से सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो हर एक के अपने अपने, हर मूर्ख का अपना अपना एक मत होता है, तो किसका सही है? आपको मैं पूछूं उत्तर दिशा कौन सी है, एक अंदाजे से बता दीजिए कौन सी दिशा है उत्तर, कोई बोलेगा उधर है, कोई बोलेगा उधर है, कोई बोलेगा इधर है, तो कैसे पता चलेगा? आपके पास वो कंपास रहेगा, मराठी में होका यंत्र कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी है, हाँ जो चुंबक चुंबक का जो एक यंत्र होता है, दिशा यंत्र, हाँ वो बहुत सिंपल है वो शब्द, दिशा यंत्र, दिशा दिखाने वाला यंत्र है, तो वो अगर दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन में है, तो सबको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा कि ये, अनलेस वो फॉल्टी हो, अगर काम करने वाला दिशा यंत्र है बोल रहा है कि ये उत्तर दिशा ये है, तो कोई बोला नहीं नहीं मेरा मत वहाँ वहाँ पे उत्तर दिशा होनी चाहिए, कोई वहाँ पे होना चाहिए उत्तर दिशा, ऐसा थोड़ी होता है। तो वैसे ही शास्त्र हमारे दिशा यंत्र हैं, हमको दिशा दिखाते हैं कि भैया ये है, तो प्रभुपाद जी उसको पूछे, लेकिन बहुत लोग शास्त्र नहीं समझते तो उनको युक्ति से समझाना पड़ता है, तो उसको बोले कि गीता में भगवान तो कहते हैं कि आप तो ये मानते हो ना भगवान सबके स्रोत हैं, सबके मूल हैं, तो वो कहते हैं हाँ इतना तो मैं मानता हूँ, तो उसको कहते हैं भगवान कहते हैं पिता हम अस्ते जगतो माता धाता पितामा, मैं इस जगत का पिता हूँ, तो उसको पूछे आपके पिताजी को आकार आकार है कि नहीं है, तो बोला हाँ मेरे पिताजी को तो आकार है, तो उनके पिताजी को आकार है कि नहीं है, तो बोले हाँ दादाजी को ना हाँ आकार है उनको भी, उनके पिताजी को तो आपने देखा नहीं होगा लेकिन अंदाजा लगा सकते हो कि वो निराकार थे या उनका आकार था, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं उनका आकार तो होना आवश्यक है, मैंने तो देखा नहीं था मेरे परदादा को, लेकिन और उनके परदादा के परदादा उनका हाँ उनका भी है, तो प्रभुपाद जी उनको बोले अरे इन सबका अगर पिता अगर आकार के साथ है तो जगत का पिता निराकार कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसको समझाया। तो एक उद्योगपति आया था प्रभुपाद जी से मिलने के लिए और कहने लगा कि तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि भगवान का दिव्य रूप है हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसा हर पल बदलने वाला नहीं है, या हमारे जैसा जो क्षयशील नहीं है, दिव्य है, तो वही फर्क है बस। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक उद्योगपति मिलने आया था, वो कहता है कि भगवान के साकार रूप से मुझे निराकार रूप ही अधिक भाता है, ऐसा कहने लगा। अलग अरे अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा होती है, क्या करें। तो प्रभुपाद जी को अनेक अनेक ऐसे प्रसंगों को सामना करना पड़ता था, तो उद्योगपति बोलने लगा कि हाँ मुझे तो निराकार पर ही ज़्यादा आकृष्ट है मेरा मन साकार से। तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला मान लो कि 1 करोड़ रुपए हैं, वो 1 करोड़ रुपए तुम्हारी जेब में रहेंगे तो ज़्यादा प्रसन्न होगे तुम, या 1 करोड़ लोगों के जेब में 1-1 रुपया के रूप में रहेंगे तो ज़्यादा प्रसन्न होगे। तो बोला नहीं नहीं मेरे जेब में 1 करोड़ रहेगा तो ही मैं प्रसन्न होगा। तो प्रभुपाद जी बोले उसको बिल्कुल उसी तरह भगवान मतलब 1 करोड़ रुपए एक जगह पे हैं, और ब्रह्म यानी निराकार उनका जो रूप है माने सब जगह फैला हुआ, वो 1-1 रुपया हर एक के जेब में है, तो आपको आकर्षित क्या करेगा। आपके जेब में 1 करोड़ रुपए आकर्षित कर, वो तो उद्योगपति था खैर, इसलिए उसको जिस भाषा समझती है जिस भाषा में उसी भाषा में उसको समझा दिया। तो ये हमको जानना चाहिए कि सबसे प्रथम तो ये जानना चाहिए कि भगवान का दिव्य रूप है, और आगे भगवान कह रहे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, हमारी जितनी उत्कंठा है उतने उत्कंठा के प्रमाण में ही भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे बहुत सारे विविध प्रकार के भक्त हैं, विविध भारत में आप देखोगे हर राज्य में भगवान के विग्रह हैं। सबसे प्रथम तो हमको जानना चाहिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान कृष्ण हैं और उनके विविध अवतार हैं, और जो सारे देवी देवता हैं वो कौन है, भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि है। तो ये कौन कह रहा है, कृष्ण ही कह रहे हैं अहम आदिर ही देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः, तो कह रहे हैं मैं ही सभी देवी देवताओं का आदि हूँ। तो क्या हरेक की पूजा करना आवश्यक होगा, हरेक का भक्त बनना पड़ेगा क्या। तो भगवान ही उद्धव को बताते हैं कृष्ण भगवान कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्जा, अच्युत की ईज्जा माने कृष्ण की अर्चना अगर हम करेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण जगत उसमें सारे देवी देवता भी आ गए अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। कैसे बोलते हैं, जैसे आप कोई पेड़ लगाते हो और उसको उगाना चाहते हो तो पानी कहाँ पे दोगे, जड़ में पानी दोगे तो सब सब जो उसकी शाखा है उसको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा पानी। तो वैसे ही हम अगर कृष्ण की उपासना करेंगे, कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो अपने आप सारी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। उनका अनादर नहीं करना है, लेकिन अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बोले कि ठीक है कर भी दी थी तो प्रॉब्लम क्या है, समस्या, चलो इनकी भी कर दी, इनकी भी कर दी, कोई हमसे नाराज ना हो जाए, सब सबकी थोड़ी सी खुशामद कर दी तो क्या प्रॉब्लम है। तो दूसरा उदाहरण दे रहे आगे का, बोलते कि नहीं, जैसे खाना आप पेट को ही देते हो मुंह के द्वारा। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी को जब विदेश में भक्ति का प्रचार कर रहे थे, तो एक माता जी आई और उसने हाथ ऊपर किया, प्रभुपाद जी भक्ति का महत्व बता रहे थे। तो माता जी ने बोला, लेकिन स्वामी जी भगवान को पाने के तो अलग अलग तरीके हैं ना। तो प्रभुपाद कहते हैं, नहीं, जैसे खाना खाने का एक ही तरीका है, ये ऐसे खाना नहीं खा सकते आप, ऐसे खाना नहीं खा सकते, ऐसे खाना नहीं खा सकते। वैसे ही भक्ति, भगवान को पाने का एक ही तरीका है, वो भक्ति करनी है और कृष्ण भक्ति करनी है। तो या फिर कृष्ण के अलग अलग अवतार हैं, भगवान रामचंद्र हैं, भगवान नरसिंहदेव हैं, तो अपने अपने इष्ट देवता के अनुसार, लेकिन विष्णु तत्व और उनके प्रधान है भगवान कृष्ण। तो ये सबसे प्रथम हम जान लिए, थोड़े विग्रहों की जो पूजा होती है उसका विज्ञान हमने शॉर्ट में समझ लिया। वैसे तो इसके ऊपर कितनी बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन एक साधारण चर्चा हमने कर दी। और अभी हम देखेंगे कि विग्रहों की सेवा हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे आज हमने किया भी प्रैक्टिकली, हमने भगवान का दर्शन लिया, तो वो दर्शन कैसे लेना चाहिए हमको, अलग 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 प्रकार, अलग 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 देशों के भक्त हमको सिखाते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। साक्षात चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। जगन्नाथपुरी में आप में से कितने लोग गए हैं? कुछ कुछ लोग जाकर आए हैं। हाँ, तो वहाँ पे जगन्नाथ जी है, बलदेव जी है, सुभद्रा जी है, और भगवान जब दर्शन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो क्या हुआ था, एक बूढ़ी औरत क्या कर रही थी, एक बूढ़ी महिला थी, उसको दिख नहीं रहा था क्योंकि बहुत सामने भीड़ थी, तो उसको पता नहीं था क्या करें। भगवान को देखने की इतनी उत्कंठा थी कि क्या किया उसने, हर भगवान के विग्रह के सामने ट्रेडिशनल मंदिरों में गरुड़ स्तंभ होता है, तो एक पैर गरुड़ स्तंभ माने कि स्वयं गरुड़ जी, तो गरुड़ जी के ऊपर एक पैर रख दिया उसने, दूसरा पैर महाप्रभु के ऊपर रख दिया, और ऐसा ऐसा करके देख रही है जगन्नाथ जी को। तो महाप्रभु के जो सेवक थे गोविंद, वो उसको कह रहे हैं, वो जो महिला है उसको डांट रहे हैं, अरे उतर नीचे, कुछ कुछ आपको ज्ञान है कि नहीं किसके ऊपर चढ़ी हो आप, कुछ रीति रिवाज है कि नहीं, कुछ तमीज है कि नहीं, उतरो नीचे। तो महाप्रभु उसको देखकर गुस्सा हो गए, अपने सेवक के ऊपर महाप्रभु गुस्सा हो गए, उसको बोला, अरे मूर्ख, तू बदतमीज है, तुझे अक्कल नहीं है। उसका उसकी जैसी उत्कंठा देखो, किस उत्कंठा से वो देख रही, कि आजू बाजू क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है उसको भगवान के दर्शन देखते समय। जैसे भागवतम में आता है भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, इस तरह के से मग्न होके करनी चाहिए कि आजू बाजू क्या चल रहा है पता ना चले। जैसे एक बार उदाहरण देते हैं वहां पे कि एक तीर को धार लगाने वाला काम कर रहा था, 11वें स्कंद में आता है। तो कब से वो धार लगा रहा था, अपने काम में मग्न था, तो क्या हुआ, बाजू से राजा का पूरा एक मंडल, मंत्रिमंडल और पूरा जो सारा जो सैनिक का दल, पूरा बाजू से चला गया उसके। तो राजा का दल तो थोड़ी, हाँ, जो सन्यासियों का दल है, जो पूरा चुप मौनियों का दल तो थोड़ी है, हाँ, वहाँ पे हाथी चित्कार करेंगे, घोड़े के टापों की आवाज़ आएगी, वो नगारे बजेंगे, ढोल ताशे बजेंगे, और वो सारा पूरा जो उसका मंडल था, पूरा दल था, वो चला गया। अब एक ने आके उसको पूछा कि अरे तुमने देखा नहीं, पता नहीं चला तुमको कि राजा बाजू से चला गया? तो बोला कि नहीं, मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि मुझे पता ही नहीं चला, मैंने आवाज़ भी नहीं सुनी, मैंने देखा भी नहीं सामने। तो यहाँ पे जो अवधूत ब्राह्मण हैं जो 11वें स्कंद के, वो बताते हैं कि हमारी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि जब भगवान का दर्शन ले रहे हैं तो चलो कुछ फोन बज गया, अरे कौन है, अरे किसका मैसेज आ गया, कोई जप कर रहा है तो अरे ये इम्पोर्टेंट काम याद आ गया तो बोले जब ही हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो और कोई दुनिया में इम्पोर्टेंट है नहीं, दुनिया बिल्कुल नहीं रुकेगी, किसी भी हमारे हस्तक्षेप के लिए दुनिया नहीं रुकेगी, लेकिन हम रुक जाएंगे अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो। तो इस प्रकार से ये दर्शन की उत्कंठा होनी चाहिए हृदय में। और एक उत्कंठा के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है, हमारे दक्षिण भारत में श्रीरंगम करके एक क्षेत्र है। आप में से कितने लोग श्रीरंगम गए हैं? कोई कोई लोग, बहुत कम लोग गए श्रीरंगम। अच्छा ठीक है, लगता है आपको थोड़ा ट्रैवल प्लान बनाना पड़ेगा अगली छुट्टियों में सही जगह पे जाने की आदत डालनी पड़ेगी या आप सही जगह पे हो, लेकिन जब भी घूमना है तो भारत में इतने सारे दिव्य देश हैं, वहाँ पे हमको जाने की उत्कंठा तो होनी चाहिए मन में। ये दर्शन भी उत्कंठा ही होती है, उत्कंठा से ही सब कुछ होता है। जैसे मान लो अभी 12:30 बजे भोजन है लेकिन आपको भूख ही नहीं लगी है, तो कितना भी मिष्टान्न क्यों ना हो, आपके पसंदीदार भी क्यों ना हो, क्या आपको खाने की इच्छा होगी, क्या उससे आपको आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट में भूख ही नहीं है। तो वैसे ही भगवान चाहे हमारे सामने आके खड़े हो जाए लेकिन अगर हमारी उत्कंठा नहीं है तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि दर्शनम अपि अदर्शनम इव, वो भगवान को देखना भी ना देखने के जैसा ही है अगर उत्कंठा नहीं है हृदय में तो। दुर्योधन ने नहीं देखा था भगवान को, शिशुपाल ने नहीं देखा था भगवान को, क्या वो देख के भी कुछ सीखे, उससे कुछ अनुभव हुआ भगवान का माधुर्य का? कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। तो माधुर्य अनुभवम विना दर्शनम अपि अदर्शनम इव, वो बिना देखने जैसा ही है। बहुत लोग बोलते हैं हमको भगवान को दिखाओ, बोले अरे भगवान को देख के क्या करोगे, उत्कंठा ही नहीं है हृदय में तो भगवान को देख के क्या करोगे? और शिशुपाल जैसे भगवान को देखोगे या दुर्योधन जैसे भगवान को देखोगे? तो हमारे एक बहुत भगवान को कैसे देखना चाहिए हमारे आचार्य हमको बताते हैं। तो दक्षिण भारत में श्रीरंगम में एक बहुत ही बड़े भक्त थे जिनका नाम था तिरुपान अलवार। अलवार माने जो भगवान के सेवक होते हैं तो उनको दक्षिण भारत में अलवार कहते हैं, बड़े भक्त होते हैं। जैसे हम इधर गोस्वामी कहते हैं ना उत्तर में, वैसे दक्षिण में उनको अलवार कहते हैं। तो तिरुपान अलवार करके थे, तो वे उनको कहते हैं ये पंचम वर्ण के हैं, क्योंकि समाज की व्यवस्था में क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके भी बाहर हैं, वो जाति व्यवस्था के हिसाब से इनके भी बाहर हैं वो। लेकिन भगवान का भक्त किसी जाति का नहीं होता, भगवान स्वयं कहते हैं, हाँ अद्वैताचार्य कहते हैं, ये श्रील हरिदास ठाकुर उनको कहते हैं कि ब्राह्मणानाम सहस्रेशु सत्रया जी विशिष्यते, हाँ हजारों जो आप कह रहे हो कि वर्णों में सबसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्योंकि लोगों को सिखाते हैं, तो ऐसे हजारों ब्राह्मण में सत्रया जी विशिष्यते, जो सत्र कर सकता है अपने मंत्रों से वो श्रेष्ठ है। सत्रया जी सहस्रेभ्यो सर्व वेदांत पारगा, उससे भी श्रेष्ठ है ऐसे हजारों में जो वेदांत को सही से समझे। वेदांत वित कोट्या विष्णु भक्ता विशिष्यते, ऐसे हजारों लोग हैं जो वेदांत जानते हैं उनसे भी श्रेष्ठ है एक विष्णु का भक्त। और वैष्णवानाम सहस्त्रेभ्यो एकांतेको विशिष्यते, जो भगवान के लिए एक ही एक उसकी इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो उसमें कोई जात पात का विचार नहीं है, उम्र का विचार नहीं है, क्यों कौन से देश का है उसका विचार नहीं है, किसी का भी विचार नहीं है। लेकिन क्या है, मनुष्यों ने क्या बना दिया उसको, एक भेदभाव करने का एक माध्यम बना दिया, तो बेचारे को मंदिर में प्रवेश ही नहीं मिलता था। ये तिरुपान अलवार को है बड़े भक्त। सभी समय उनका मन जो है वो भगवान के ऊपर ही रहता था, स्मरण करते थे, ठीक है भगवान का दर्शन नहीं कर पाते तो क्या हुआ, भक्ति जो है वो कोई रोक नहीं सकता, तो वो भगवान का स्मरण करते थे। तो उस समय की जो जैसी व्यवस्था थी, तो श्री रंगनाथ जी के जो पुजारी थे उनका नाम था लोक सारंग मुनि, तो वो कावेरी नदी से पानी लेकर रंगनाथ जी का अभिषेक करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए लेकर आते थे। तो क्या हुआ कि ये सीढ़ी के ऊपर बैठते थे, कावेरी नदी के सीढ़ी के ऊपर, वहां पे बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। तो ये लोग सारंग मुनि पानी भर लिया उन्होंने और जा रहे मंदिर की तरफ। ये कावेरी का जो तीर है वो सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं, घाट की सीढ़ियां, और बीच में वो एक जगह ऐसी आई कि बहुत ही पतली गली थी वो, तो उसमें से एक ही व्यक्ति जा सकते, उधर वो बैठे थे। तो वो अपने अपने ध्यान में थे, वो ये जो भक्त थे कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, तो आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। तो उनको पता नहीं था कि ये सेवा के लिए मटकी लेकर जा रहे हैं भगवान की। तो उसने दो तीन बार बोला कि ए बाजू हट, मुझे सेवा के लिए जाना है। तो वो सुनाई नहीं दिया उनको, जैसे हमने कहा था ना कि वो जो सेवा में इतने मगन है कि ध्यान ही नहीं बाहर का चल रहा है। फिर उसने क्या किया, नीचे से एक पत्थर उठाया और उसको मारा और उसको सर को जाके लग गया और खून बहना चालू हो गया। तो वो समाधि से बाहर आ गया और क्या किया, उसने शाप दे दिया। तो बोला नहीं, उस वो उनके उनको दंडवत किया, बोलता है कि मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी सेवा के बीच में आ गया और स्वयं बाजू में हो गया। तो क्या हुआ, उसके बाद जो लोक सारंग मुनि है वो मंदिर में प्रवेश करना चाह रहे थे, जो श्री रंगनाथ जी का मंदिर है उसमें प्रवेश करना चाह रहे थे। तो क्या हुआ, मंदिर तो दरवाजा तो हमेशा खुला रहता था, इस बार बंद हो गया, अंदर से बंद है। तो बोले अंदर से बंद कैसे हो सकता है, कोई पुजारी अंदर नहीं है। तो दूसरे बाजू से गए, दूसरे बाजू से भी बंद है, तीसरे बाजू से भी बंद है, सभी दरवाजे बंद हैं मंदिर के। तो सोचने लगा, अरे मैं सेवा कैसे करूँगा, मैं तो पानी लेके आया भगवान की सेवा करने के लिए। तो रंगनाथ उसको सपने में आकर कहते हैं, मैं तुमसे सेवा नहीं स्वीकार करूँगा। तो बोले क्यों, बोले आज तुमने मेरे बड़े भक्त का अपमान कर दिया जो रास्ते में था तुम्हारे, तू क्या थोड़ा रुक के नहीं आ सकता था, क्यों उसको तुमको आवश्यकता थी। तो उसने कहा कि नहीं, लेकिन वो समाज व्यवस्था के बाहर के जात का व्यक्ति था, इसलिए मैंने उसको बाजू बाजू में किया। हाँ तो लेकिन आप बताओ, मैं फिर कैसे कैसे मैं कैसे मैं आपका दर्शन वापस कैसे पाऊँ, मैं मतलब आपकी सेवा तो मैं करना चाहता हूँ। तो उनको बोला कि उसको मंदिर में लेके आओ मेरे दर्शन के लिए, तब मैं दरवाजा खोलूंगा। तो लोग सारंग मुनि कहने लगे भगवान को कि अरे मैं उनको कैसे लेके आऊंगा मंदिर के अंदर, वो भी उसके पैर मंदिर को लगेंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तो भगवान ने कहा अच्छा, उसके पैर जमीन को लगेंगे तो अपवित्र हो जाएगा, एक काम करना तुम उसको कंधे पे उठा के लेके आना। तो वैसे तो भक्त थे तो कहें कि हाँ ठीक है, आपकी सेवा के लिए ये करूँगा मैं। तो गए वो तिरुपान अलवर, उनको बोले कि भगवान ने कहा है आपको कंधे पे उठा कर लेके आओ करके। तो वो कहता कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो भगवान के पुजारी है। बोले नहीं नहीं, अरे आपको जानते नहीं, भगवान की सारी सेवा रुकी हुई है आपकी वजह से, मुझे ये सेवा करने दो। फिर जबरदस्ती उसको कंधे पे उठाकर उसको मंदिर में रंगनाथ जी का दर्शन करने लेके आ गए। जैसे ही दर्शन करने लेके आ गए, पहली बार जिंदगी में वो भगवान का दर्शन कर रहा था। तो जैसे ही उसको कंधे पे उठाया और गर्भगृह के ऊपर लेके तरफ लेके जा रहे हैं, तो अपने आप स्फूर्ति से उसने 10 श्लोक लिख दिए भगवान के सुंदरता के ऊपर। मतलब देख रहा है और भगवान के रूप का वर्णन कर रहा है। और उसका अंत का जो 10वां श्लोक है एकदम पास में आ गया भगवान के, और उसने लिखा कि जिस आंखों ने भगवान का दर्शन किया उस आंखों को इस दुनिया में देखने लायक और कुछ चीज बची नहीं। ऐसा जैसे उसने बोला, तुरंत उसने देह छोड़ दिया, भगवान ने उधर से उसको वैकुंठ में प्राप्त कर लिया। जय श्री तिरुपान अलवार की जय, श्री रंगनाथ जी की जय। तो इस प्रकार ये दर्शन करते हैं विग्रहों का, तो ये हमारे आचार्य हमको सिखाते हैं, उनके जैसा अनुकरण तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम प्रार्थना के साथ हम दर्शन कर सकते हैं, हमारे हृदय की बात हम भगवान को बता सकते हैं। भगवान उसी के लिए खड़े हैं कि हमारी बात सुने, चाहे हमें अभी भगवान की बात सुनने सुनने में ना आए, क्योंकि अंदर इतना सारा शोर चल रहा है, भगवान की बात कैसे सुनेंगे? अपने ही सारे अनर्थों का शोर मेरे हृदय में चल रहा है, तो भगवान की बात कैसे सुनाई देगी? लेकिन भगवान तो सुन रहे हैं मेरी बात। कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी को कॉल करते हो तो उसको आपकी बात सुनाई देती है लेकिन आपको उसकी बात नहीं सुनाई देती, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, तो क्या करेंगे उस समय? आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना है तो ठीक है, उसकी बात नहीं सुनाई दे रही, फिर भी आप अपना मैसेज बोल के रहोगे कि नहीं रहेगा? तो वैसे ही भगवान के साथ हमको ऐसे ही करना है। आना है भगवान को, सुनाना है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, और अपना दुखड़ा नहीं सुना है, सुनाना है केवल। वो भी ठीक है, अगर कोई नया नया है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरा जॉब दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। धर्म देही जन्म देही पुत्रम देही देही देही, मतलब हम देही बन गए उसके कारण। तो असल में प्रगति का लक्षण ये है कि हम तो भगवान के सेवक हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो असल में भगवान के आनंद में ही हमारा आनंद है। हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि ये करके मुझे आनंद प्राप्त होगा, अरे थोड़ा सा ये स्टेप ले लूंगा तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। ये क्योंकि हमारा भौतिक मन हमको बता रहा है। इतने सारे जन्मों से हम केवल मन की ही मुरादें पूरी कर रहे हैं। क्या मैं संतुष्ट हुआ मन की मुराद पूरी करके? कभी भी नहीं हुआ। वो जो रिक्तता है हमारे हृदय की, वो केवल भगवान ही पूरी कर सकते हैं। वो कोई व्यक्ति, इसी जगत की किसी वस्तु या व्यक्ति वो रिक्तता को पूर्ण नहीं कर सकती। ये हम जितने जल्दी समझेंगे उतने जल्दी हम भगवान की भक्ति अपना लेंगे और भगवान के साथ अपना खोया हुआ संबंध, कृष्ण प्राप्य संबंध शास्त्र में लिखा है, कृष्ण प्राप्य संबंध, कृष्ण साध्य संबंध नहीं लिखा है। तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि प्राप्य संबंध और साध्य संबंध में क्या, भगवान के साथ हमारा संबंध, हाँ ये हमको एक चीज होता है कमाना, मतलब अर्न समथिंग, और दूसरा होता है क्लेम, क्लेम समथिंग, उसके ऊपर अमल जमाना। कमाना और अमल जमाना, इसमें से भगवान के प्रति कौन सा हमारा संबंध है वो हम थोड़े सिंपल भाषा में समझाते हैं कि मान लो आपको, आप मान लो मैं रोजगार भी काम करता हूँ, रोजगार रोज रोज मेहनत करता हूँ और रोज पैसे कमाता हूँ, रोजगार पे काम करता हूँ मैं, तो मुझे रोज काम करके मान लो 500 रुपये मिलते हैं, ठीक है? तो उस 500 रुपये को मैं बोलूँगा ये कमाना है, ये मैं अगर नहीं काम करूँगा तो मुझे नहीं मिलेंगे, तो ये कमाना हो गया। और दूसरा है स्मरण करना, मान लो मैंने किसी के पास अपने 500 रुपये रख दिए हैं, मैं भूल गया रख कर, तो जब भी मुझे स्मरण आ गया मैंने जाके पूछा कि भैया मेरे 500 रुपये आपके पास पड़े हुए हैं वापस दे दो, तो उसको कमाना कहेंगे क्या? नहीं। वैसे ही हम भगवान के साथ अपना संबंध भूल चुके हैं, उसको क्लेम करना है हमको, उसको अर्न नहीं करना है, उसको कमाना नहीं है, केवल समझना है कि वो संबंध है। और वो संबंध जब ही समझेंगे उसी दिन वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो समझने के लिए धीरे धीरे समय लगता है। तो यही हमको भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, ये पहले जानना होगा कि दुनिया की कोई वस्तु या व्यक्ति मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये देह के परे हूँ, तो कोई भी जड़ वस्तु मुझे संतुष्ट कर ही नहीं सकती, कोशिश भी करूँ तो नहीं कर सकती, कितना भी कोई प्रयास करो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, लेकिन नहीं 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 कर सकती वो संतुष्ट। क्या प्रूफ क्या है? बोले अभी अभी मैं पूछता हूँ मैं अपने आप को, क्या मैं भगवान के बिना संतुष्ट हूँ? नहीं हूँ। कितना भी कोई भी यश प्राप्त कर ले भौतिक जगत में, कितना भी धन कमा ले, कितना भी उसका एजुकेशन हो, लेकिन नहीं होगा वो जब तक ये जो प्यास है वो प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे संबंध समझ कर। तो आज और क्या क्या कर सकते हैं भगवान के सामने? स्तुति स्तव पाठ कर सकते हैं, यानी भगवान की स्तुति कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे शास्त्रों में भगवान की प्रार्थनाएं हैं। अगर हम स्वयं प्रार्थना नहीं कर सकते तो कुंती महारानी की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, भीष्म देव की प्रार्थना है, उद्धव जी की प्रार्थना है, कितनी सारी प्रार्थनाएं हमारे शास्त्रों में। तो वो प्रार्थना को लेकर हम उनका भाव समझकर वैसे का वैसा वैसे का वैसा भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जो स्तव पाठ है तो उसका भी कुछ सुंदर उदाहरण है। अपने चैतन्य महाप्रभु एक मंदिर में देख रहे थे कि एक भक्त जो है वो गीता का पाठ कर रहा था, भगवद गीता का पाठ कर रहा था 18 अध्याय, लेकिन उसको ठीक से पढ़ना नहीं आता था। तो वो कुछ शुद्ध पाठ कर रहा था, कुछ अशुद्ध पाठ कर रहा था। तो सारे आजू बाजू के पंडित जो थे वो उसको हंस रहे थे, अरे देखो इसको कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं आता, आ गया गीता पढ़ने के लिए। लेकिन वो जानते नहीं थे कि भगवान भावग्राही है। भावग्राही का क्या मतलब है? कि हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। मैं एक बार एक संस्कृत का एक कोर्स ले रहा था विदेशियों के लिए, तो उसमें एक विदेशी ने प्रश्न पूछा, विदेशी भक्त थे, तो उन्होंने प्रश्न पूछा, मैं उनको कृष्ण कैसे कहते हैं, हाँ उसका उच्चारण सिखा रहा था। तो क्या है उनका उच्चारण की शक्ति, वो अलग भाषा का उनका संस्कार होने के कारण वो सही से नहीं बोल पा रहे थे। तो अंत में हताश होकर उन्होंने मुझे पूछा कि प्रभु जी क्या मैं कभी जीवन में कृष्ण बोल पाऊंगा? तो क्या मैं भगवान को पुकार भी पाऊंगा? तो फिर उनको उत्तर दिया कि देखिए भगवान ये नहीं देखते कि आप कैसे बोल रहे हो, भगवान ये भी नहीं देखते कि आप क्या बोल रहे हो, भगवान ये देखते कि आप मन में क्या सोच रहे हो। वही भगवान देखते हैं, सोचते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो व्यक्ति है जो गीता का पाठ कर रहा था उसके आंखों से अश्रु बह रहे थे। तो महाप्रभु उसको पूछते हैं कि भाई क्या क्या तुमको तो ठीक से पढ़ने को में नहीं हो रहा, तुम कैसे क्या सोचकर रो रहे हो? तो वो कहते कि विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। बोले मेरे गुरु ने बोला है कि भगवान के सामने आकर रोज 18 अध्याय पढ़ लो, तो मुझे उतना शुद्ध अशुद्ध मुझे आता नहीं है, मैं बस आके भगवान के लिए पढ़ता हूँ। और मैं जब ये देखता हूँ कि भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के लिए सारे ब्रह्मांडों के नायक होकर भी अर्जुन का सारथ्य स्वीकार कर रहे हैं, सारथी बन गए अर्जुन के, तो ये जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ये गीता पाठ छोड़ा नहीं जाता। तो महाप्रभु से कहते हैं कि तुम्ही जे जानी ले अर्थ गीतार अर्थ सार, गीतार पाठे तुम्हारा ही अधिकार। बोलते आपका ही अधिकार है गीता पढ़ने का, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा पंडित है, बोलते कि पांडित्य का कुछ काम ही नहीं है उधर, बस काम किसका है? तो बोलते कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना, कि जिसकी भगवान में और गुरु में एक जैसी भक्ति है तो वही अर्थ समझ सकता है शास्त्रों का। ये नहीं कि अरे कुछ हाँ संस्कृत में कुछ PhD कर लिया, MA कर लिया, या ये वो कर लिया, सब न्याय शास्त्र सब पढ़ लिए तो उसको अधिकार नहीं है। तो ये उससे हमको सीख मिलती है। तो और क्या कर सकते हैं? भगवान की अर्चना कर सकते हैं, भगवान को भोग दिखा सकते हैं। हमारे घर पे भगवान का एक देव गृह होना चाहिए और उसको जो हम रोज बनाते हैं, रोज हम खाते हैं, वो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। मतलब एक कोई ऐसा रिचुअल नहीं है कि अच्छा 4 बार पूरा दबा के खा रहे थे, चलो अभी एक और एक रिचुअल जोड़ दिया, भगवान के सामने प्लेट रख दिया और अभी हम ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो भगवान की घर में अर्चना करने का महत्व क्या है, उसके पीछे का जो तत्व क्या है, कि मेरे कुटुंब के और मेरे जीवन के केंद्र भगवान है, ये समझकर हमको सब कुछ करना है। कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर भगवान का है, ये कुटुंब परिवार भी मेरा नहीं है, ये भगवान का, इसलिए मैं चला रहा हूँ। और जो मैं खा रहा हूँ वो सब, वो क्यों खा रहा हूँ मैं, असल में ठाकुर जी को पहले मैं निवेदन करूँगा, फिर मैं उसको ग्रहण करूँगा प्रसादी के रूप में। क्यों? क्योंकि एक चीज़ तो हो गई कि भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मा करण, हमारा जो शरीर है हम जो खाते हैं उससे बनता है, ये आपको पता ही होगा। हाँ उतना ही नहीं, हमारा मन जो है वो भी हम जो खाते हैं उससे बनता है। ये सोचा कभी आपने, मन के जो संस्कार हैं वो भी जहाँ हम खाते हैं उसी से बनते हैं। तो अगर हमारे शास्त्र में लिया है कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व माने हमारे हृदय, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, हमें एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, ये किसकी प्रॉब्लम है? असल में ये प्रचंड देहावेश की प्रॉब्लम है, पूरा ध्यान देह में ही जा रहा है, इसलिए डिप्रेशन आ रहा है, इसलिए एंग्जाइटी आ रही है। चाहे साइकोलॉजिस्ट आपको कुछ भी गोली पिला दे या खिला दे, वो परमानेंट सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता। मानस शास्त्रज्ञ आजकल के क्या करते हैं, वो जानते ही नहीं कि सारे मुसीबत की जड़ क्या है, ऊपर ऊपर से कुछ दवाइयाँ दे देंगे। अरे अच्छा आपको डिप्रेशन आ रहा है, ये गोली खाओ, अच्छा आपको एंग्जाइटी आ रहा है, ये गोली खाओ, अच्छा नींद नहीं आ रही है, ये गोली खाओ, अच्छा नींद ज़्यादा आ रही है तो ये गोली खाओ। अरे भाई जब तक हम देह का आवेश नहीं छोड़ेंगे तब तक कितनी भी गोलियां खाते रहे, गोली से क्या होगा? उससे थोड़ी हमारे मन के संस्कार थोड़ी बदलने वाले हैं। ऐसी नेक्स्ट टाइम हम कोई डिप्रेशन आए, एंग्जाइटी आए और बोले साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, तो उनको बोलना चाहिए ऐसी कोई गोली खिलाओ कि हमारे हृदय में पवित्र विचार आ जाए। ऐसी गोली है आपके पास? सुंदर विचार आए, पवित्र विचार आए, उदात्त विचार आए, सेवा के विचार आए, ऐसी गोली दे दो। बनाई है आपने किसी लेबोरेटरी में आजकल? नहीं बना ही नहीं सकते। एक तो डिप्रेशन दे देंगे या स्टिमुलेंट दे देंगे, दो ही चीज़ है उनके पास। एक तो आपकी भावनाओं को दबा दो, भौतिक भावनाओं को हमारे दबा दो, या फिर उसको ऐसा ऐसा खुला छोड़ दो कि मतलब एकदम बिल्कुल पशु ही बन जाएगा वो। तो ये इससे क्या होगा? पहले तो हमको जानना चाहिए कि देह के आवेश के कारण जो सारे मानसिक जो तनाव है, जो सारे मानसिकता मानसिक रोग हैं, सब देह आवेश के कारण हुए हैं। और हमको ये मनुष्य शरीर दिया ही है, किस लिए दिया है? महाजनों ने कहा है मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, बोलते भगवान की बड़ी कृपा जब हो जाती है तो मनुष्य देह मिलती है, उससे भी हजार गुना कृपा हो जाती है तो पता चलता है कि अरे मैं ये भौतिक जगत में अटका हुआ हूँ, ये जानना ही बहुत बड़ा भाग्य है। और उसके बाद जब भक्ति करने की इच्छा होती है, कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा होती है, कृष्ण का मंत्र जप करने की इच्छा होती है, तो करोड़ गुना भाग्य है ये। ये सबको लाभ नहीं है। हम रास्ते में देखो आप कितने सारे लोग हैं, कोई पड़ी नहीं है किसी को किसकी। जैसे आए थे, जैसे कोई चिड़िया है, आई चार दिन बसी, कुछ प्रजा उत्पत्ति कर दी, मर गई। कोई कुत्ता है, आया खाया सोया, प्रजा उत्पत्ति कर दी, दूसरे कुत्तों के साथ लड़ाई की, मर गया। तो ये मनुष्य जीवन उसके लिए नहीं है। तो मनुष्य जीवन केवल ये समझने के लिए, ये केवल समझने के लिए कि देखिए कि मेरे जीवन में मुझे आनंद चाहिए, मैं आत्मा हूँ और मुझे आनंद चाहिए। और ये मनुष्य नाम की जो फेज है मेरे लाइफ में जो भगवान ने दी हुई है, ये भी एक पोजिशन है मनुष्य, वो किस लिए दी गई हुई है? पुलिस को वर्दी क्यों दी जाती है? कोई ड्यूटी निभाने के लिए दी जाती है या ऐसे ही थोड़ा ड्रामा करने के लिए दी जाती है? कोई ड्यूटी निभाने के लिए दी जाती है? पुलिस की वर्दी दी जाती है तो उसके साथ कुछ ड्यूटी आती है। वैसे मनुष्य देह जो आई है उसके साथ एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी क्या है? भगवान को समझना, बस यही ड्यूटी है। यही जीवन सफल है अगर हम भगवान को समझ पाए। मैं अगर भगवान को समझ पाया इस जीवन में क्यों, 100 जीवन के बाद भी अगर समझ पाया तो यही क्या है, यही संपूर्णता है मेरे जीवन की। वरना क्या होगा, आया खाया सोया चला गया, आया खाया सोया चला गया। कितने जन्मों के जन्मों ऐसे ही बीत गए, आया खाया सोया चला गया। तो ये कौन हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों में लिखा है, यो वा एतद् अक्षरम गार्य अविदिता अविदित्वा अस्माद् लोकात् प्रहिति सकृपणा। वो अत्यंत मूढ़ है जो इस जगत में मनुष्य देह को पाया लेकिन भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं किया। बाकी सब कर लिया होगा उसने, ठीक है, बैंक बैलेंस उसका बहुत भारी भरकम बढ़ गया होगा, और जो 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 कुछ चाहते हैं लोग इस दुनिया में वो सब उसने पाया होगा, लेकिन भगवान के साथ में संबंध ही नहीं जुड़ा, तो फिर क्या क्या लाभ हो गया? तो ये हमको पता चलता है कि कैसे हमको हमारे साथ भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। तो भगवान बड़ी कृपा से विविध रूपों में आते हैं। तो भगवान की अर्चना अगर हमको करनी है तो भगवान को भगवान के विग्रह घर पे स्थापन करके या कोई फोटो हो, पिक्चर हो भगवान की, उसको भी अर्पण कर सकते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर सही भाव से प्रसाद को ग्रहण किया तो सारी मानसिक बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये तो बस एक साइड इफेक्ट है मानसिक बीमारियां दूर होना, तो हृदय शुद्ध होगा और शांत होगा और भगवान में लगेगा, ये मुख्य उसका उद्देश्य है। और कोई कहे कि अरे भगवान की सेवा करने के लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो भगवान कहते हैं अरे मेरी सेवा करने के लिए तुमको कुछ भी नहीं लगेगा, बस तुमको तुम्हारा मन लगेगा जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता है। मतलब कुछ पाना भी नहीं, वहां जाकर कुछ लेके आऊं, वहां जाके कुछ लेके आऊं, वो भी नहीं, मन ही है, केवल मन के साथ भगवान की सेवा हो सकती है, कोई वस्तु की भी आपको आवश्यकता नहीं है, केवल मन में सेवा हो सकती है और वो भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं। मन की सेवा, मन की हुई सेवा, सोच सकते हैं कितना भगवान कृपालु है। अगर आप आपके परिवार वालों को बोलेंगे मैं मन में आपको खाना खिलाऊंगा तो बोलेंगे अरे मन में खाना खिलाओगे, चलो बाहर पैसा पैसा लेके आओ और फिर खाना खिलाओ हमको, सही वाला खाना चाहिए, फिर हम भी आपको मन में ही आदर करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। तो लेकिन भगवान वो बोलते कि अरे मन में सेवा करो, वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। तो एक उदाहरण है कि एक विप्रत है जिनके पास कुछ सामग्री नहीं थी सेवा करने के लिए, लेकिन उन्होंने वैष्णव के समाज में सुना कि भगवान को आप विविध इस सीजन में खीर अर्पण करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, मन में ही एक गाय का स्मरण किया, मन में ही उसका दूध निकाला। ये सब हम भी कर सकते कि नहीं कर सकते। और मन में ही उसको उबाला, मन में ही उसमें चावल डाले, मन में ही उसको उबालने के बाद शक्कर डाली और बाद में तैयार होने के बाद मन में ही वो पात्र को उठाने जा रहा था तो गलती से उसको दो उंगलियां जो हैं पात्र के अंदर चली गई और तुरंत उसको ऐसा जैसा अग्नि का चटका लग जाता है ना, वो उष्मा से उसने एकदम समाधि के बाहर आ गया, देखे कि दोनों अंगूठे जले हुए हैं उसके, इतनी तीव्रता थी उसकी सोच में। और वहां पे भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, भगवान नारायण हंस रहे हैं और लक्ष्मी देवी को बोलते कि ये देखो मेरा भक्त मेरी मानसी सेवा कर रहा है और इतनी तीव्रता से कर रहा है, उसको मैं आज ही उठा लूंगा। जो मन में सोच रहा है, असल में देखा जाए ना, जो हम तीव्रता से मन में सोचते हैं वही प्रसंग हमको प्राप्त हो जाते हैं, वही चीज हमको प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए आपने जो शिक्षण लिया वो क्या अपने आप प्राप्त हुआ? नहीं, आपने कुछ सोचा होगा ना कि मैं ये बनूंगा, मैं वो ये बनूंगा मैं, या हम जो कुछ उद्योग कर रहे हैं क्या अपने आप कर रहे हैं? भूतकाल में कुछ तो सोचा होगा ना तीव्रता से कि नहीं मुझे ये उद्योगपति बनना है, नहीं मुझे ये इंजीनियर बनना है ना, मुझे ये मेडिकल में जाना है। इसलिए पहले तो मन में आया वो, फिर मन में 10 बार सोचा होगा कि अरे मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा। फिर उसने उसका उपाय किया होगा, तभी जाके तो वो बना। तो वैसे ही सेम चीज भगवान को पाने के लिए वही चीज करनी है कि मन में पहले सोचना है कि मैं भगवान का हूं और फिर बाद में भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण, उसी से सब चीज चालू हो जाती है। फिर कीर्तन जो हमने आप कब से कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन, गुण का कीर्तन, लीला का कीर्तन, फिर क्या होता है लीला, फिर स्मरण, जो सुनेंगे बार बार और जो बोलेंगे बार बार वही तो स्मरण में आएगा। ये बाहर की एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, बार बार एक ही लाइन सुनाती है आपको। आप देखोगे कोई एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी सोचिए आपके मन में, मुझे मत बताइए लेकिन मन में सोचिए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए, बार बार एक ही चीज बताई जाती है, दोहराई जाती है बार 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 बार। ब्रेन वॉश, बराबर सही बात। जो चीज मुझे आवश्यक नहीं है घड़ी घड़ी उसी को बार बार बोला जाता है, अरे ये मोबाइल ले लो, अरे ये लैपटॉप ले लो, अरे ये वो ले लो, ऐसी बार 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 बोलाई जाती है। कुछ तो एक सॉन्ग के साथ या किसी फेमस क्रिकेट स्टार के साथ या किसी फेमस मूवी स्टार के साथ उसकी एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है, बार बार 50 बार टीवी पे दिखाओ, फिर कीर्तन किसका होगा, उसी का होगा। हाँ, श्रवण हो गया, अभी कीर्तन, फिर दूसरे को बोलेंगे, अरे देखा मैंने ये चीज खरीदी, अरे देखा इसमें ये फीचर्स है, तो ये दूसरे को बोलेंगे। तो श्रवण कीर्तन हो गया, आप क्या किसकी बारी, स्मरण। फिर स्मरण किसका होगा, उसी का होगा, अरे हाँ देखो देखो मेरे पास ये है, अरे देखो देखो मेरे पास वो है। तो ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री वही ट्रिक करती है। असल में क्या होना चाहिए, श्रवण भगवान का होना चाहिए, कीर्तन भगवान का होना चाहिए, तो स्मरण भी भगवान का होगा और प्राप्त भी भगवान को करेंगे। और अगर कोई भौतिक वस्तु का स्मरण हुआ तो भौतिक वस्तु को प्राप्त करेंगे। तो भगवान ही हमको बोल रहे कि अरे तुमको किसका स्मरण करना है, हम पहले बता दो। तो एक और हम क्या कर सकते हैं, भगवान का उत्सव मना सकते हैं। विविध प्रकार के उत्सव हैं, जन्माष्टमी है, आज जैसे ब्रह्मोत्सव है, वो विविध प्रकार के उत्सव मना सकते हैं। और उत्सव में आने का बात ऐसे नहीं कि हम जैसे मैं जैसा था वैसे ही वापस चला गया, कुछ प्रण के साथ ये उत्सव हृदय में एक एक फव्वारा उत्पन्न करना चाहिए कि अरे हाँ यही उत्सव है असल में। उत्सव यानी कि अंदर की चीज कुछ उभर के बाहर आना, उसको उत्सव कहते हैं। तो वो चीज लेकर बैटरी को चार्ज करना मतलब, और वो बार बार करना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ प्रेरणा लेकर कि मैं इतना इतना जप करूँगा, या फिर मैं इतना स्मरण करूँगा, या मैं इतना श्रवण करूँगा, तो ये कुछ एक संकल्प के साथ हम जाएंगे तो ही उसको उत्सव हम कह सकते हैं। हाँ, नहीं तो क्या, भौतिक जगत इतना क्लेश से भरा हुआ है और इतना माया इतना फंसाती है कि जैसे ही मैं बाहर निकला मेरे भजन से, तुरंत मेरे ऊपर जैसे कोई शेर होता है ना, कोई कब बाहर आएगा मतलब, कोई उसके ऊपर छलांग लगाने के लिए वो तैयार है, चपेट में लाने के लिए उसको तैयार है। तो वैसे ही माया बैठी हुई है हमको अपने चपेट में लाने के लिए। दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यंते माया मेताम तरंती दे, कि ये जो गुणमयी माया है भौतिक जगत की, तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना तो मैं भक्ति करूंगा, मेरा ये दुख पूरा हो जाएगा ना इससे मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं भक्ति करूंगा, अच्छा मेरे परिवार की ये समस्या दूर हो जाएंगी ना, या मेरी हेल्थ की ये समस्या दूर हो जाएगी तो मैं थोड़ा भक्ति में सीरियस हो जाऊंगा। तो लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, बोले कि दुख हमारे लिए लाइन में खड़े हैं, ये आया हुआ दुख जाएगा कि नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन नया वाला अवश्य आएगा, अवश्य आने ही वाला है, वो चेंज नहीं कर सकते आप, मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, उसको बदल ही नहीं सकते हम, उसी में बैठकर भजन करना है। वो तकलीफें आती ही रहेंगी, जब तक मैं ये भौतिक जगत में हूं, जब तक मैं वैकुंठ में नहीं हूं, तब तक वो तकलीफें आते ही रहेंगी। एक जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, एक आती है फिर दूसरी आती है, क्या आप बोलोगे कि समुद्र को तब पार करूंगा, अभी डूब रहा हूं मैं समुद्र में, ये लहर जाने दो फिर मैं पार करूंगा। तो ये लहर रुकेंगे नहीं, इसके बाद दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। तो ऐसे परिवार की समस्या सॉल्व हो जाए फिर मैं भजन करूंगा, फिर मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं। हम भगवान की बात तो हम मानेंगे, किसी किसकी बात मानेंगे, भगवान ही कह रहे कि एक के बाद एक समस्याएं आएंगी, दुखालय है हमारे प्रारब्ध, मेरे प्रारब्ध के हिसाब से दुख मुझे ढूंढ के लेंगे, मैं कितना भी भागूं, बंकर में जाके भी छुप जाऊं मैं, लेकिन दुख मुझे ढूंढ के निकालेंगे। कोई कहेगा कि अरे बाहर जाने से दुख नहीं होगा, घर पे बैठे रहो, तो एक महिला है तो वो कुछ कुकिंग कर रही थी तो एक सिलेंडर का बर्स्ट हो गया, पूरा मुंह जल गया, तो घर बैठे बैठे दुख ढूंढ सकता है हमको, ऐसा जरूरत नहीं कि कहीं बाहर जाओ और कुछ एक्सीडेंट हो जाए, घर बैठे बैठे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई कहे कि अरे हाँ सब ठीक है, अच्छे से खाऊंगा पीऊंगा, सात्विक भोजन करूंगा तो कुछ बीमारियां नहीं आएंगी, अरे भाई 2 साल के बच्ची को हृदय में छिद्र हो जाता है कभी कभी, उसने क्या बुरा खाया। 4 साल के बच्चे को कैंसर हो जाता है कभी कभी, तो उसने क्या किया। तो ये जो प्रारब्ध है वो हमको ढूंढ के निकालेगा किधर भी बैठे हो हम। जैसे वो बछड़ा होता है ना, अपनी 100 गाय हैं उसमें भी अपनी माँ को ढूंढ के निकालता है वो, उसको बताना नहीं पड़ता, ये लंबे सींग वाली है ना, ये तेरी माँ है, जा उसके वो ढूंढ लेता है। वैसे हमारा प्रारब्ध हमको ढूंढ लेगा, किधर भी हो, हम छुपे हुए हो किधर भी, उधर ढूंढ लेगा। तो उससे हमको कुछ नहीं करना है, बस उसमें सम रहना है हमको कि ठीक है ये आएगा, सुख आएगा ठीक है, दुख आएगा ठीक है, कोई चिंता नहीं, मुझे भक्ति करनी है। और उस जगत में जाना है कि जिसमें मैं भक्ति ठीक से करते रहूं। एक बार अगर भक्ति जो करना सीख गया, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता सुख हो या दुख हो, सुखम वा यदि वा दुखम। तो इतने आनंद में है भक्ति करते समय कि ये भौतिक, मान लो आपके पास कुछ करोड़ सोने की मुद्राएं आपने आपको लाभ हो गई, तो मान सोने की करोड़ मुद्राएं आपको लाभ हो गई किसी कारण, तो आपके पास वो 54-58 है, वो किसी ने दे दिया किसी ने छीन लिया, आपको कुछ फर्क पड़ेगा? अरे उसने मैंने 54 छीन ली, या अरे वाह मेरे को आज 54 मिल गई। अरे 54 भी तो करेंसी में भी नहीं है आजकल, है ना, है कि नहीं, 1 रुपए से ऊपर होता है ना सब कुछ। तो वैसे ही भगवान की भक्ति का आनंद जब हमको प्राप्त होगा, तो जीवन के दुख और सुख दोनों 54 के जैसे है, प्राप्त होए कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी ने छीन लिए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कितने भी 100 54 छीन ली तो भी फर्क नहीं पड़ता, एक 54 खींच ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी भक्ति अच्छे से चलती रहे बस। तो कैसे हमको, अभी और 15 मिनट है, थोड़ा आपको और सहन करना पड़ेगा, दुख भी आ जाए तो आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भक्ति का आनंद है, तो मेरे जैसे ने दिया हुआ दुख भी आपके लिए 54 के जैसा होगा। और ये भक्ति की शुरुआत और ये सारी भक्ति किसके साथ की जाती है? बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति करना मतलब क्या करना, तो कहते हैं कि भक्ति का मतलब है कि हमको केंद्र में से हटा देना और भगवान को केंद्र में स्थापित करना। हमको, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को केंद्र में रख रहा हूँ, सब जगह के केंद्र में। एक तो मैं क्षुद्र जीव हूँ, मेरा परिमाण क्या है, शास्त्रों में लिखा है मेरा परिमाण है कि जो बाल की नोक होती है ना उसके 10,000 भाग करेंगे तो जो सूक्ष्म भाग होता है वो मेरा परिमाण है, वो आत्मा का परिमाण है। और वो क्षुद्र परिमाण होकर भी मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले, ऐसा हो जाए मेरे जीवन में, वैसा हो जाए। तो हम भगवान के अंश होने के कारण हमारा सुख केवल भगवान के साथ ही है और कहीं पे भी नहीं है, और बाकी सब जो है वो व्यवहार है। व्यवहार मतलब समझते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको कोई गाड़ी मिली हुई है, तो गाड़ी में पेट्रोल डालना आवश्यक है कि नहीं? लेकिन वो पेट्रोल के पीछे इतने क्यों हम आ सकते हैं, वो पेट्रोल को चंदन की सुगंध आनी चाहिए। तो ऐसा अगर कोई सोचे तो पागलपन है कि नहीं? अरे भाई पेट्रोल पेट्रोल है, डाल दो गाड़ी में और अब चलते बनो। तो जाना कहाँ है वो देखो, वो हमको ये देखना है कि हमको भगवान के पास जाना है। ठीक है, परिवार है, शरीर है, समाज है, सब गाड़ी की तरह है, तो गाड़ी आवश्यक है, तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल डालना आवश्यक है या डीजल जो भी डालते हैं वो डालना आवश्यक है। जैसे शरीर है तो शरीर को खाना आवश्यक है, तो जितना आवश्यक है वो चलाने के लिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है खाना कैसे खाना चाहिए, औषधिवत भोक्तव्यम बोलते हैं, जैसे औषधि लेते हैं ना वैसे हमको, मतलब चलाने के लिए। मान लो कोई बीमारी होती है, कोई क्रोसिन खाता है, मान लीजिए कोई बुखार आता है क्रोसिन खाता है, अगर वो सोचे नहीं नहीं मैं वो क्रोसिन में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालूंगा और उसको लिमका के साथ पीऊंगा, तो उसका क्या मतलब है? अरे भाई क्रोसिन है, खा ले, निगल ले, हो गया, तुम्हारा बुखार उतर जाए बस। तो लेकिन इस जगत में लोग कष्ट क्या करते उसके पीछे, अरे क्रोसिन को और कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, बोले अरे वही दवाई है, वो दवाई की तरह खा लो, आगे आगे काम बना लो। तो वैसे ही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि कृष्ण की सेवा कैसे अच्छे से होती रहे, और उसका जो आनंद है वो केवल हम स्वयं अनुभव करके ही देख सकते हैं। हमारे महाजन कहते हैं कि कोई व्यक्ति है उसको कितना भी समझाए चंद्रा ऐसा है, चंद्रा ऐसा है, चंद्रा ऐसा है, जब तक खुद नहीं देखता, खुद अनुभव नहीं करता, उसको नहीं समझेगा कि चंद्रा कैसा है। कितना भी कोई बोले अरे गोल आकार का है और बहुत उसमें से रोशनी निकलती है, बहुत मन को आह्लाद देती है, वो बता पाएंगे कि किधर है, लेकिन हम उधर नहीं देखेंगे तो कैसे दिखेगा हमको चंद्र। तो और एक प्रकार की सेवा होती है कि जिसमें भगवान की अनुव्रज्जा होती है, भगवान की अगर मूर्ति निकलती है बाहर उसके पीछे पीछे जाना। तो एक बार ऐसे ही श्री विग्रहों की जो पालखी, पालखी कहते ना, पालखी निकल गई थी और श्रीपाद रामानुजाचार्य थे, तो वो पालखी के पीछे पीछे हमको संकीर्तन करते करते जाना होता है। तो वो जा रहे हैं और देख रहे कि एक व्यक्ति वो भगवान के पीछे जाते जाने जाने के बजाय क्या कर रहा है, एक स्त्री के ऊपर छाता पकड़ के बैठा हुआ है। तो रामानुजाचार्य उतने उनके शिष्यों को बोले, अरे उस मूर्ख को बुलाओ जरा। तो उसको, उसके पास गए, उसको बुलाया तो बोले कि अरे क्या कर रहे थे तुम, इधर भगवान की पालकी जा रही है, तुम क्या कर रहे थे। तो बोलता है कि नहीं, मुझे उस स्त्री की आंखें बहुत अच्छी लगी तो इसलिए मैं उसकी सेवा कर रहा था। तो उनको रामानुजाचार्य कहें, अच्छा इससे भी अगर सुंदर आंखें मैं तुमको दिखाऊं तो क्या तुम उनकी सेवा करोगे। तो बोला हाँ मैं उनकी सेवा करूंगा, इनसे सुंदर अगर अगर आंखें दिख गई तो। तो रामानुजाचार्य ने उसका हाथ पकड़ा, उसका नाम था धनुर्दास, उसका हाथ पकड़ा, उसको भगवान के सामने लेके गया और भगवान की आंखें दिखाई और बोले कि क्या इस आंखों से अधिक सुंदर आंखें कहीं हैं। तो उसने तो भगवान का दर्शन उससे पहले भी किया था लेकिन कभी वो आकृष्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार गुरु के साथ जब देखा तब उसका मन आकृष्ट हो गया और कहने लगा कि अरे मैं किसके पीछे भाग रहा था। अमेध्य पूर्णे कृमिजाल संकुले, ये भौतिक देह स्वभाव दुर्गंधि निविनिंदिता अंतरे, बोलते अमेध्य रक्त मांस अस्थि से बना हुआ ये शरीर है, उसके आप ऊपर हम कितना भी चंदन का लेप लगा दें, कुछ भी परफ्यूम लगा दें, कुछ भी करें तो भी क्या है, स्वभाव दुर्गंधि विनिंदिता अंतरे, अंदर से तो स्वभाव से ही दुर्गंधि युक्त है। और कलेवरे मूत्र पुरीष भावित, बोले अंदर विष्ठा मूत्र से भरा हुआ शरीर है, हाँ उसमें कौन आकर्षित हो जाता है, बोलते कि रमंती मूढ़ा विरमंती पंडिता, जो जो सोचने वाला व्यक्ति है, विचारशील व्यक्ति है, मनुष्य माने क्या, मननशील व्यक्ति, और पशु माने क्या, पश्यति अविशेषण इति पशु, जो केवल देखता रहता है कुछ समझता नहीं है वह है पशु। और मनुष्य क्या है, मननशील, मनन करके सोचता है कि अरे इसके इसमें क्या, इसमें कौन सी ऐसी बात है, हाँ भगवान का तो दिव्य रूप है, तो उसमें जो अपना मन लगा देता है तो वो पंडित है, वो विद्वान है, वो ही अपना जीवन सार्थक कर सकता है। तो इससे हमको पता चलता है कि भगवान ही एक ऐसी वस्तु, प्राप्य वस्तु है। तो अभी एक 5 मिनट बचे हैं तो एक कुछ भजन लिखा था तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो कोई है क्या मृदंग वाला? नहीं है तो भी चलेगा, ऐसे ही गा लेंगे। तो यह है कि कैसे हमको इस मनुष्य जीवन को उस उपयोग, सबसे उत्तम उपयोग क्या है कि भगवान की सेवा करनी है उससे, और उससे जो आनंद मिलेगा वो आनंद धीरे धीरे मिलेगा। पहले ही दिन हम सोचेंगे अरे मैं भगवान को देख लूं और भक्तों की तरह और उच्च भक्तों की तरह भाव विभोर हो जाऊं, तो ऐसे संभव ही नहीं है। वो केवल धीरे धीरे, जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा मेरा, वैसे वैसे अनर्थ जैसे निकल जाएंगे हृदय से, वैसे वैसे भगवान की अनुभूति होनी चालू हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना, जो हम यहाँ पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो इसका मंत्र का भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सुखी होने का एक ही उपाय है, ये मंत्र गाओ और सुखी हो जाओ। नृत्य गीते न सुसुखी भव कह रहे हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो एक भजन लिखा है तो प्रयास करता हूँ इसको गाने का और उसको स्पष्ट करने का। तो उसके बोल पहले मैं बताता हूँ और फिर उसके बाद तो ये ऐसे चालू होता है, ये कुछ एक दो महीने पहले लिखा था, अगर आपको आप इससे प्रसन्न है तो अच्छा है। तो देखिए भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो जो शास्त्र से जो हमने पढ़ा है उसको एक कविता में डालने का प्रयास किया गया है। सरफरोश ही प्यार कर सके, बेकरार ही नाम, रहमत तो एक गरीब ही पाए, तन्हा ही पैगाम। तो क्या है जो जो अरे एक मत डालना वो क्या बोलते हैं थिएट्रिकल इफेक्ट आ जाएगा नहीं तो तो प्रेम कौन कर सकता है जो कुछ बलिदान देना चाहता है, वही तो प्रेम कर सकता है, नहीं तो वो ऊपर ऊपर का प्रेम है, वो असल में इस जगत में तो प्रेम है नहीं, प्रेम केवल भगवान के साथ ही हो सकता है। और भगवान के साथ जब होगा तब वही प्रेम जब उफन के बाहर आएगा तो बाकी जीवों के प्रति होगा। बेकरार ही नाम, नाम कौन कर सकता है, जो बेकरार है जिसकी उत्कंठा है वही नाम कर सकता है। रहम तो एक गरीब ही पाए, रहम किसको मिलती है, जो गरीब समझता है खुद को उसी को तो रहम मिलती है, जो थोड़ी ना बोलता है अरे हाँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उसको कोई भिक्षा देगा तो भगवान के सामने आते हैं सब, हमारा जो अहंकार है वो बाहर रख के आना पड़ेगा, वरना भगवान बोलेंगे अरे वैसे ही तुम मत तो हो, मेरे कृपा की तुमको क्या जरूरत है। तनहा ही पैगाम, थोड़ा सा हृदय में एक तनहाई उत्पन्न होनी चाहिए भगवान के लिए। तनहा, तनहा समझते हैं अकेलेपन, अरे भगवान के बिना मैं अकेला हूँ, तब जाके पैगाम मिलेगा उसको। तनहा जो है उसी को तो पैगाम मिलता है, बिछड़ा हुआ है उसी को तो पैगाम मिलता है। तो अगर आप पीछे पीछे दोहरा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही मैं गा लूंगा। मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, गम सारे भुला कर अब ये ठान ले। मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, गम सारे भुला कर अब ये ठान ले। मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, गम सारे भुला कर अब ये ठान ले। मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, भुला कर अब ये ठान ले। ओ जन्म जन्म यूं बीत गए क्यों ये भी जन्म गमाते हो, जन्म जन्म यूं बीत गए क्यों ये भी जन्म गमाते हो, क्या है पता इस जीवन का क्यों विषय भोग अपनाते हो, क्या है पता इस जीवन का क्यों विषय भोग अपनाते हो। मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, गम सारे भुला कर अब ये ठान ले। मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, गम सारे भुला कर अब ये ठान ले। दुख यारों का दुख हरने को गौर हरि अवतार हुआ, दुख यारों का दुख हरने को गौर हरि अवतार, दुखियारों का दुख हरने को गौर हरि अवतार हुआ। नाम गान वरदान को पा अब खान पान की क्यों परवा, नाम गान वरदान को पा अब खान पान की क्यों परवा, नाम गान वरदान को पा अब खान पान की क्यों परवा। मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, गम सारे भुला कर अब ये ठान ले। मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, गम सारे। एक है नाम जो पार करा संसार दिला दे प्रेम अपार, एक है नाम जो पार करा संसार दिला दे प्रेम अपार, एक है नाम जो पार करा संसार दिला दे प्रेम अपार, एक है नाम जो पार करा संसार। ओ नाम ही है मन मीत तेरा, जपले भजले धरले इस बार। नाम ही है मन मीत तेरा, जपले भजले धरले इस बार। मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, गम सारे भुला कर अब ये ठान ले। मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, गम सारे भुला कर अब ये ठान ले। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, गम सारे भुला कर अब ये ठान ले। मेरे प्यारे मन राधा जू का नाम ले, गम सारे भुला कर अब ये ठान ले। जय श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 गौर। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। प्रभु जी का मधुर गीत से मधुर कथा बताया, हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं। आइए उनको धन्यवाद बोलेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। एक सोचना है, आप लोग ने कौन कौन प्रसाद का कूपन लिया है, हाथ उठाएंगे? ठीक है, कौन कौन नहीं लिया है वो लोग सब जाके नीचे कूपन कलेक्ट कीजिए। मंदिर का सीढ़ी से उतर जाएंगे तो तुरंत उधर टेबल है, वो कूपन कलेक्ट कर दीजिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी भगवान श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी का आविर्भाव दिवस को उपलब्ध में महाआरती होगा, सब महाआरती में भाग ले लीजिए। उसके पश्चात सब लोग प्रसाद के लिए जाइए। हरे कृष्णा।
जय राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी राधे। यशोमती नंदना ब्रज बर नागर गोकुल रंज कान्हा। यशोमती नंदना ब्रज बर नागर गोकुल रंजना। यशोमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन काना। गोकुल रंजन गोपी परान धन मदन मनोहर। गोपी परान धन मदन मनोहर। ओ काली दमन विधान काली दमन विधान हो या हरि नाम अमिया बिन
Nityananda Sri Advaita
गदाधार श्री वासादि गौर भक्त वृंद जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता सदाधार श्री वासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता सदाधार श्री वासादि गौर भक्तवृंद जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम